अर्जुन को वो प्रश्न जगा दिए कि भाई अध्यात्म विद्या ही सब विद्याओं की माई बाप है। आदिभूत और आदिदेव को जानना ही जानने का जानकारी का फायदा हुआ। जानने की शक्ति, मानने की शक्ति, करने की शक्ति है तो कर्म करो, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हो। उठत बैठत ओई उठाने कात कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते लेते देते खिन्नो अपि न खिद्यते। ब्रह्मवेत्ता खिन्न होते हुए भी अंदर गहराई से खिन्नता से पृथक है। हे बेन कटको रोटी आलो बा, तमारा छोकरा छैया सुखी रहसे, चार दिवस नो भूख्यो छो। आक्रांत करता हुआ रंग मंच पर व्यक्ति आता है और ऐसी ऐसी भाषा और ऐसी ऐसी करुण बोली बोलता है कि लोगों के आंखों से आंसू आ जाते, और वही जाकर वेश बदल के आता है। मुझ हरिश्चंद्र के राज्य में मिथ्या भाषण और मिथ्या धन और मिथ्या व्यवहार संभव नहीं हो सकता है। हरिश्चंद्र बनकर अदा कर रहा है अपना रोल, तभी भी वो अपने को जानता है कि मैं कौन हूं। और हे माई बाप, चार दिन का भूखा प्यासा हूं, तभी भी वो जानता है मैं कौन हूं। ऐसे जिसको गुरु कृपा हो गई, जिसने अध्यात्म रहस्य जान लिया, आदि देवी क्या है, आदि भौतिक क्या है, कर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ये ठीक से समझ लिया। सत्संग में आंखें बंद करना अपराध है, सत्संग के समय ध्यान करना अपराध है। एक बार सत्संग सुनते सुनते मैं एकदम भाव विभोर हो गया, तो बापू गुरुजी ने मेरे गुरुदेव ने डांटा, क्या करता है। तब से मुझे ये कानून अच्छी तरह से बैठ गया कि सत्संग के समय ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान में भाव की धारा चलेगी, सत्संग में सूझबूझ की धारा को दबा देगी। तो कुछ एक कड़ी टूट गई तो रेलगाड़ी के डिब्बे होते ना, एक डिब्बा दूसरे से छूट गया तो यहीं पड़े रहे, रेल कहीं पहुंच जाएगी। नारायण हरि नारायण। सत्संग ऐसे सुनना चाहिए जैसे खतरनाक शत्रु अपनी निंदा कर रहा हो, पड़ोस में दीवाल को कान देके सत्संग उसकी बात सुनते, जैसे निंदा सुनी जाती अपनी, ध्यान से कौन सा शब्द बोला, ऐसे सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग में ऐसे हीरे जवाहरात रत्न मिलते हैं कि ये तुम्हारे सूरत के हीरे तो क्या, इंद्र के हीरे भी कोई माना नहीं रखते। जब मिला आत्म हीरा तो सारी दुनिया हो गई सवा कसीरा। सत्संग वो चीज है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्संग की प्रसादी दी, सत्संग की प्रसादी दी तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, वो ब्रह्म क्या है जिस ब्रह्म से सारी सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु महेश और अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो ब्रह्म परमात्मा क्या हो? किम तद् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवतम किम उच्यते आदि यज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः प्रयाण काले च कथम गेयो असि नित्य आत्मभि। आठवें अध्याय का 13वां श्लोक। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है जो सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है और सब के अंदर अनुस्यूत है, वह ब्रह्म क्या है? अनुस्यूत कल बताया था ना, जैसे तरंग में पानी अनुस्यूत है, दूध में सफेदी अनुस्यूत है, तेल में चिकास अनुस्यूत है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में वह ब्रह्म अनुस्यूत है, सारे ब्रह्मांड उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। जैसे कारण कार्य में अनुस्यूत होता है, मोहनथाल में शक्कर और बेसन अनुस्यूत होता है, ऐसे ब्रह्म परमात्मा सारे जगत का कारण है। तो कार्य में ब्रह्म अनुस्यूत है, तो वो ब्रह्म क्या है प्रभु? किम तद् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। आदि यज्ञ कथम प्रोक्तो अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदनः, प्राण काले च कथम गेयो अस्मिन् नियतात्मना भी। तो हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत किसको कहते कहा गया है, आदि देव किसको कहा जाता है, यहाँ आदि यज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, नियत आत्मा मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जानने योग्य हैं, कैसे जाने जाते हैं। अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद भूत भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीता। परम अक्षरम ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है, परम अक्षर जो क्षरता है वो शरीर है, जो क्षरता है वह शरीर है, जो अक्षर है जो क्षरता नहीं एक रस है वह ब्रह्म परमात्मा है। उदन नियत आत्मा मनुष्य के द्वारा अंत काल में आप कैसे जाने जाते हो, बहुत ऊंची बात है। तो भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संगीता। परम अक्षरम ब्रह्म है और जीव का अपना जो होनापन है, होनापन अपना अस्तित्व, शरीर का अस्तित्व तो नहीं टिकता है लेकिन अपना अस्तित्व मिटता नहीं। भगवान है कि नहीं वो संदेह हो सकता है, लेकिन मैं हूं कि नहीं वो संदेह नहीं होता है। तो अपना जो होनापन है उसको अध्यात्म कहते हैं, अपना जो मैं है उसको अध्यात्म कहते हैं। फिर इंद्रियों का शरीर का सुख मिलाकर मैं सुखी, दुख मिलाकर मैं दुखी, सर्टिफिकेट मिलाकर मैं डॉक्टर, मैं वकील, ये सब मिलावट है माया की, लेकिन मैं ये होनापन जो है वह अध्यात्म है। प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है उसकी कर्म संज्ञा कही गई है, और धर्माभाव अर्थात नाशवान पदार्थों को आदिभूत कहते हैं। अध्यात्म, फिर कर्म, फिर जो नाशवान शरीर और पदार्थ है उसको आदिभूत कहते हैं। हिरणगर्भ और ब्रह्मा जी आदि देव है, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही आदि यज्ञ हूं। अंतर्यामी बुद्धि ने ठीक जाना है कि नहीं जाना उसको अंतर्यामी तत्व जानता है, मेरी आंख ठीक जानती कि नहीं जान देखती उसको भी अंतर्यामी तत्व जानता, मेरा मन प्रसन्न है मैं क्रोध करते हुए अंदर तप रहा हूं कि शांत हूं उसको भी अंतर्यामी जानता है। तो अंतर्यामी को अंतर्यामी जानते उसका चिंतन करके अपनी मैं को उस अंतर्यामी की मैं से मिला देना, ये साधना की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, उपलब्धियों की पराकाष्ठा है। इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही आदि यज्ञ हूं। अंतकाल च मामेव सुमरन सुमरान उक्त्वा कालेवरम यह प्रयाति सद भाव यान्ति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ जाता है वह मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझ आदि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब गीता का स्पष्टीकरण बहुत ऊंची बात का है। भगवान कहते हैं प्रयाण काले भी ओम इति अक्षरम राजन व्यवहारम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजते देहम स याति परमाम गति। स्कंद पुराण मार्कंडे ऋषि अपने शिष्य राजा को कहते हैं जो ओम इस अक्षर का जप और उसके अर्थ का चिंतन करते हैं वे पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते हुए परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पतंजलि महाराज कहते हैं वो जो पर ब्रह्म परमात्मा है अंतर्यामी होकर बैठा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति परलय का सामर्थ्य लाते वही आत्म रूप से सबके अंदर है, उसका स्वाभाविक ध्वनि है प्रणव। तस्य वाचक प्रणव योग दर्शन समाधि पाद 27। उस ईश्वर का वाचक प्रणव है तद जप तद अर्थनम तद भावनम। उसका जप करे उसी के अर्थ का चिंतन करे और उसी के अपने मैं आत्म ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करे। मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए मुझे ईश्वर मिल जाए ये साधारण स्थिति है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान ही ब्रह्म है। और अपने को ईश्वर नहीं मिलेगा, अपना आपा को जानना ही ईश्वर से मुलाकात है। देखा अपने आप सबके पल्ले नहीं पड़ेगा, ये बहुत ऊंची बात हो गई। लाखों में से कोई कोई ये बात पकड़ेगा, बाकी तो सब हृदय को धोके अमृत चला गया। अभी जो बोल दिया मैंने फिर भी सुनने का लाभ तो होगा, पुण्य तो होगा। इस चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को पाने की तड़प से मन शुद्ध होने लगता है। संसार का सुख पाने की इच्छा मात्र से मन में कूड़ कपट बेईमानी चिंता भय शोक और परिश्रम आ घेरता है और परमात्मा को पाने की इच्छा मात्र से त्याग चिंतन शांति सज्जनता नम्रता कोमलता आदि सद्गुण अपने आप उत्पन्न होते। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मात्र से सद्गुण आ जाते क्योंकि ईश्वर सत है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा से उसके गुण आने लगते और संसार असत है तो उसकी प्राप्ति की इच्छा मात्र से असद गुण आने लगते हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा से देर सवेर उस इच्छा की पूर्ति में ईश्वर का सहयोग होता है। संसार की प्राप्ति की इच्छा में संसार का सहयोग नहीं होता, अपना पुरुषार्थ होता है, प्रारब्ध होता है और संसार में तो छीना झपटी होती। फिर उस सभी छीना झपटियों करते कराते वो चीज पाई जाती। तुम्हारे पास जो एक थाली भोजन आया है वो भी कईयों के मुंह से कईयों के जीवन से खेल खिलाकर छीना झपटी करके तुम्हारे पास एक थाली भोजन पहुंचता है। थाली में रोटी है तो पक्षियों को मार भगाया है, जंतुओं को कीटनाशक दवा से मारा है। अगर थाली में सब्जी है तो भी कुछ ऐसा ही किया है। थाली में दूध है तो बछड़े बछड़ियों को धकेल के उनका हक छीनकर आप तक पहुंचाया गया है। फल खाते हो, फूल खाते हो, फल खाते हो, अन्न खाते हो अथवा दूध लेते हो तो किसी न किसी के मुंह से बचाकर आप तक पहुंचाया जाता है। क्या ख्याल है? लेकिन परमात्मा किसी से छीना झपटी करके सुरक्षित करके आप तक नहीं पहुंचाया जाता है। परमात्मा तो पूर्ण भरपूर है और आपका अपना आपा है। केवल संसार की झूठे संसार की ख्वाहिशें कम हो जाए और परमात्मा को पाने की इच्छा तीव्र होती जाए तो परमात्मा बेपर्दे हो जाते। और एक बार बेपर्दे हुए तो बस, फिर एक बार ठीक से ज्ञान हो गया तो अज्ञान नहीं होता है। जैसे ये डब्बी है, तिलक की डब्बी का आपको ज्ञान हो गया, अब मैंने छुपा दी, तुमको दूसरी बातों में लगा दिया, तो इस डब्बी का विस्मरण हो सकता है, छुपा दिया तो इसका अदर्शन हो सकता है, लेकिन इसका अज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा तो व्यापक है, डब्बी छुप सकती है, लेकिन परमात्मा व्यापक है, उसका ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान नहीं होता। फेरे फिरती है कन्या और जानती है कि फलाना मेरा पति है, फिर माला लेके नहीं बोलती है कि हूँ फलाने की मैं चीकू की पत्नी, चीकू नी बैरी, ऐसा बोलती है क्या? ऐसा रटती नहीं है। और ब्राह्मण ने नाम रख दिया, छोगा नाम चीकू, अरे चीकू कोई को दाड़ माला फेरवे कि मारू नाम चीकू, तो टोकरा ना चीकू त्या ना त्या पड़ा रहे, जेनु नाम चीकू छे ते आम कर से। तो एक बार अपने में बैठ गया, मेरा नाम फलाना है अथवा मैं फलाने की पत्नी हूं, तो फिर बाजार में सब्जी लेने जाती है कि मंदिर में बैठी है कि गुरु के कथा में बैठी, लेकिन पत्नी अपने पति की, चीकुड़ी पोताना चीकुनी। तो इसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का था, ये तो ब्राह्मण ने नाम नहीं, शरीर का नाम ब्राह्मण रखता है, फेरे ब्राह्मण फिरवाता है, लेकिन ये तो वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का था, है और रहेगा, केवल उसको एक बार ज्ञान हो जाए बस, फिर वो राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगछाल, जो करे सो सहज में सो साहेब का लाल। वो फिर खाते पीते हंसते खेलते जो भी कुछ करता है उसके मन को, जैसे मेरा नाम फलाना है, फिर मैं कुछ भी करूं तो अपना नाम की कहीं विस्मृति थोड़ी हो जाती है। अपने को जानते कि हम फलाने हैं तो बस, ऐसे ही जान लिया कि जो अध्यात्म है वह वास्तविक में मेरा होनापन है। आदि देव फैलाना है, आदि भूत ये है, आदि यज्ञ वो है, बस अध्यात्म के बल से ही आदि देव आदि भूत आदि है। उस अपने मैं के सत्ता से जब फुरना दृढ़ होता है तो बुद्धि बनती, विकल्प वाला फुरना होता है तो मन बनता है, वही फुरना इंद्रियों के द्वारा ये देखता है तो दृश्य बनता है, नाक के द्वारा सूंघने वाला हो गया, पुतकार कान के द्वारा सुनने वाला हो गया। तो सुनने का साधन अलग है, सूंघने का साधन अलग है, लेकिन जानने वाला वही का वही। फिर गुलाब की पखड़ी मुंह में डाली, स्वाद आया, तो स्वाद का साधन जीभ अलग है, लेकिन जीभ को ज्ञान देने वाला वही अध्यात्म चित्त। तो दिन भर में जीभ पर कितनी चीजें आ गई, कान पर शब्द कितने आ गए, त्वचा पर ठंडे गर्म आदि स्पर्श कितने आ गए, लेकिन अध्यात्म वही का वही। ऐसे जीवन भर कितना आ गया, कितना चला गया, लेकिन जीवन दाता तत्व मेरा आत्मा हमारा है, परमात्मा आत्मा अपना आप सब परिस्थितियों का बाप। तो मरते समय भी ओम ओम माना वही, ओम ओम माना वही अध्यात्म नित्य है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंदेर मुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदमम अव्यय तत्। ये बाहर के जो पद है व्यय होने वाले, बदलने वाले, इसलिए भक्ति में गाते अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। जो चुत न हो उसको अच्युत बोलते, तो चुत न होता है वो अध्यात्म, जहां से तुम्हारा मैं उठा। हूं छो हूं तो ये नहीं, हूं जहां से स्फुरा वह अध्यात्म, तो उसका स्वाभाविक ध्वनि ओम। ये सुनने मात्र से हजारों कपिला को दान करने का फल हो जाता है। और इसमें आपकी स्थिति हो गई तो फिर तो उस पुरुष का दर्शन करके देवता लोग अपना भाग्य बना लेते, ऐसी ऊंची बात है। तुष्यंती रमंती च, उसी में संतुष्ट होते हैं, उसी में रमण करते हैं, उसी में तृप्त होते हैं। तसे तुलना के न जायते, उस आत्मरामी पुरुष की तुलना किससे करोगे। धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष नहीं करता। आत्मानम न दीक्षति, फिर वो आत्मा परमात्मा को भी नहीं चाहता। जैसे आसाराम बापू को आप लोग तो चाहते, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आसाराम बापू का दर्शन हो जाए, आसाराम बापू से मैं मिलूं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं ही तो हूँ। सर्वत्रान वधानस्य न किंचित वासना हृदय ही, मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना के न जायते। अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय 79वां श्लोक, निवासीमा श्लोक। जिसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है, जिसके हृदय में कुछ भी पाने की वासना नहीं, जो भली भांति संतुष्ट है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। किसी से नहीं, वह तो अतुलनीय है। अतुलित बल धामा, हनुमान जी जैसे बल में अतुलित है, ऐसे वो महापुरुष अपने आप में अतुलित है। जैसे भगवान शिव, किसकी बराबरी करो, दूसरा शिव लाओगे तब ना। भगवान विष्णु की किससे बराबरी करोगे। एक बार शिव जी का विवाह हो रहा था सती के साथ, बोले पिता नाम, बोले नारायण, पर पिता नाम, बोले शिव। तुम्हारे बाप का नाम, बोले नारायण, अर्थात नारायण जिसमें निवास कर रहा है, नर नारी का है नारायण। गुरु महाराज ने कहा कि पिता के पिता का दादा का नाम, बोले शिव। तो शिव तो तुम हो वर राजा, बोले नहीं, इस शिव का, इस देह, इस बाहर की आकृति के शिव का पिता है नारायण, और नारायण का पिता है आत्मा शिव। तो बोले शिव का दादा का नाम क्या, पितामह, पर पितामह नाम, बोले नारायण। तुष्यन्ति रमन्ति, और उसी सच्चिदानंद का ऐसा व्याप्त पसारा है और ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि कर्म का कंप्यूटराइज सिस्टम से ऐसा कुछ खेल हो रहा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। एक कथा आती है कि प्रयागराज से 5 कोस दूर, 5 कोस माना 10 माइल 16 किलोमीटर के अंतर पर एक काम था। एक ब्राह्मण का नियम था कि माघ मास की संक्रांति पर मैं प्रयाग में गंगा जी में स्नान करूंगा ही, तो हर माघ मास को जाता, लेकिन इस माघ मास में वृद्धत्व के कारण जाना संभव नहीं। तो अपने बेटे को बोला, बेटा तू नहाकर भी आना और घड़ा भर के आना, तुम्हें माघ मास की संक्रांति के दिन स्नान करूं, देख बेटा लेट ना हो। पितृ भक्त ब्राह्मण पुत्र ने यात्रा शुरू की, नाद होके घड़ा भर के लौट रहा था, तो रास्ते में प्रेत लेट गया। भाई तुम क्यों लेटे हो, कौन हो, बोले तुम ब्राह्मण घड़े में क्या ले जा रहे हो, बोले गंगा जल है। बोले बस उसी के लिए मैंने ये रूप बनाया और मैं लेटा हूँ। मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे मुंह में गंगा जल डाल दो। बोले तुम्हें अगर गंगा जल पिलाता हूँ तो मेरे पिता का संक्रांति स्नान में बाधा पड़ेगी, मैं कब जाऊंगा वापस लेने को और कब पहुंचूंगा। बोले भाई इस गंगा की महिमा मैं जानता हूँ, मेरे साथ एक दूसरा प्रेत रहता था ब्रह्म राक्षस, 8 वर्ष मेरे साथ रहा। प्रेतों की भी आपस में टोलियां होती, दोस्ती होती है, उनमें भी छोटे बड़े रैंक के होते, जैसे संसारी लोग है उसी में से मर के वो लोग बनते हैं। तो उसने किसी शास्त्रज्ञ अच्छे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करने वाले की क्रोध में आकर हत्या कर दी, तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया ब्राह्मण की हत्या के कारण, और बड़ा दुखी रहा। दुखी तो रहा लेकिन उसने सुन रखा था कि गंगा जल पातक नाश करके प्रेत योनि से ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्ति देने में सफल होता है। तो उसने गंगा जी का जल किसी ब्राह्मण से मांगा और गंगा जल का पान करने से उसकी सदगति हो गई। तो अब मैं भी देखता हूं कि मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुझे अपना गंगा जल पिला दो, फिर आंखें बंद करोगे तो मैं तुम्हें प्रयाग पहुंचा दूंगा, और घड़ा भरकर आंखें खोलोगे तब अपने पिता के पास तुम होगे। हम प्रेतों में ये शक्तियां सब होती हैं, आंख बंद कर देना। लाचार ब्रह्म राक्षस की बात से प्रभावित प्रेत की दयनीय स्थिति देखकर ब्राह्मण पुत्र ने जल पिला दिया। कथा कहती है माघ की संक्रांति का पिताजी स्नान कर लेंगे ये भरोसा दिलाने वाले एक प्रेत पर विश्वास किया और प्रेत को पिलाया, और फिर क्या देखता है आंखें बंद की, आंखें बंद की और चुटकी देर में ही आंखें खुली तो घड़ा भरा हुआ अपने को पिता के द्वार पाया। तो कैसी कैसी शक्ति प्रेत योनियों में होती है, लेकिन उन शक्ति का उद्गम स्थान भी ब्रह्म है और विचरण स्थान भी ब्रह्म है, और वही ब्रह्म तुम्हारा मैं बनकर बैठा है। क्या थी लीला है उसको जाना तो आपको लगेगा ये सब मेरा ही खेल है। तरंग अपने को मिटा दे तो सागर बन गई, फिर बोलेगी बड़े बड़े जहाज मुझी में रहते हैं। जीव अपना देह को और बुद्धि को मैं मानकर बेचारा परिच्छिन्न हो गया, बुद्धि को बुद्धिदाता में विश्रांति दिला दे, और देह तो बिचारी वैसे ही जड़ है, हाथ नहीं बोलता मैं हाथ हूँ, सिर नहीं बोलता मैं सिर हूँ, पैर नहीं बोलते मैं पैर हूँ, हम ही बोलते मैं हूँ, मेरे पैर है, मेरे हाथ है, मेरा फलाना है। बात बहुत ऊंची है, और आप ऊंचे से ऊंचे पद को पाने के लिए इतनी ऊंची बुद्धि मिली, और उस पद को पाने के लिए ऊंचे कर्म किए जाते हैं, यज्ञो दानम तपश्चर्या, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, राह भूले को राह दिखाना, जप तप करना, सज्जनता करना, ये सारे यज्ञ हो जाते, दान पुण्य करना, मान का दान, धन का दान, अमुक दान, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। यज्ञो दानम तपश्चर्या पावनाणी मनीषणा, बुद्धि पवित्र होती, और पवित्र बुद्धि में ही आदि पुरुष परमात्मा का ज्ञान की प्यास होती है। जिसके बुद्धि में प्यास नहीं होती वो तो सुनेगा तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं। आप बटाका पालक भाजी मूड़ा लेने गए और वहां कोई हीरा की पड़ी की लेके दिखावे तो बोले कितना मापी, तो बोल ले ले 50 रुपया, चल पड़ा लिया 13,000 आज तो 11,000 आप कहता है 1100 मैं ना लो, पर जो हीरा लेवा गया हो तो पची 13,000 ना 13,500 आप पड़े छोकरा लगन से तो ले लेवाए। भाजी मुड़ा पालक का ग्राहक हीरे का मूल्य नहीं समझता है। तो ऐसे हीरों का हीरा परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा प्रेम है, परमात्मा स्मरण है, उस परमात्मा को पाने के लिए कई उपाय बताए महापुरुषों ने। एक उपाय से नहीं पा सकते तो दूसरा उपाय, दूसरे से नहीं पाते तो तीसरा उपाय, तीसरे से नहीं पाते तो चौथा उपाय। प्रहलाद से दैत्य पुत्रों ने कहा कि प्रहलाद, तुम इतने महान और इतने विरोधों के बीच भी सम रहते हो, खुश रहते हो, प्रकृति तुम्हारे सहयोग में, आग तुम्हें जलाती नहीं, पानी तुम्हें डुबाता नहीं, क्या है? बोले, आग में, पानी में, सब में जो ब्रह्म परमात्मा है उसी को मैंने अपना आपा सौंप दिया, मैं उसकी शरण। बोले, हम उसको कैसे पाए? बोले, यह है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत में आता है, भगवान की भक्ति के ये नौ साधन है। भगवान के गुणों की लीला सुनना, श्रवण करना, सत्संग सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का रूप का ध्यान करना, भगवान के स्मरण से अपने चित्त को भगवतमय बनाना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, अर्चना करना, वंदन और दास्य सख्य और अपने आप को भगवान के आश्रित कर देना, ये नौ प्रकार की भक्ति से कोई भी साधारण आदमी भगवान को पा सकता है। जो नौ उपाय नहीं कर सकते तो उसके लिए आठ उपाय हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याधारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग। अगर आठ उपाय वाले में भी आपकी गति नहीं है तो सात उपाय भी हैं। इस संसार में, इस असार संसार में सात वस्तु है सार, संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, दैन्य, उपकार। एक तो संतों का संग, दूसरा भगवान का भजन, तीसरा देवी कार्य में सेवा में तत्परता, चौथा हृदय में दयालुता, पांचवा भगवान का ध्यान, छठा नम्रता और सातवां परोपकार। इससे भी भगवान को पा लेगा। परोपकार, नम्रता, भगवान का ध्यान, स्वभाव में दया, सेवा, भजन और संग संतों का। ये करता रहेगा तो भी भगवान को पालेगा। अगर ये सात साधन नहीं कर सकता है तो दूसरा उपाय छह साधन वाला। छह साधन क्या है कि संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया, सुसात्विक दान, इन छह के आचरण से निश्चय हो भगवान कल्याण। संध्या करे सुबह, दोपहर, शाम, दस दस प्राणायाम करे, फिर थोड़ा सा शांत, एक श्वास गया और दूसरा आया, उसके बीच में शांत स्वरूप कौन है, बस भगवान में शांति मिलेगी। ओह, संध्या, पूजा, भगवत पूजन, स्मरण, यज्ञ, हवन होम भी यज्ञ है, भूखे को अन्न देना, सेवा आदि भी यज्ञ है, तप, उपवास करना, एकादशी का उपवास करना अथवा कष्ट सह के भी अच्छे काम में लगे रहना, इसको तप बोलते। कितनी कठिनाई सह के बापू के पास पहुंचे, ये तप हो गया। कितनी असुविधा सह कर भी बैठे, ये तप हो जाता है। ये तप के गुण से भी बुद्धि शुद्ध होती और भगवान प्रसन्न होते अंदर, और बुद्धि को और ऊंची ऊंची दिशा में जाने की प्रेरणा देते। तो संध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया, सुसात्विक दान, अच्छे पात्र में अच्छी नम्रता से, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से दान तुम करना, इन छह के आचरण से निश्चय हो कल्याण। अगर ये छह नहीं कर सकते तो पांच साधन है, गोविंद, गौ, गीता, गंगा स्नान, इन पांचों की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। गोविंद का नाम, गायत्री का जप, गौ की सेवा, गीता का पठन और गंगा का स्नान, प्रेत की सदगति हो गई। अब रोज गंगा किनारे नहीं जाते, कभी कभार गए, ले आए, वो गंगा जल में दूसरा जल मिला के गंगे यमुने को तो स्मरण करो हृदय पवित्र होता। अगर पांच साधन से नहीं पकड़ते तो चार साधन भी है, संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग। पक्का करो संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग। ये चारों करते तुरंत मोह निशा का भंग। तो अपना जो अंधकार है ना आत्मा परमात्मा के बीच में, उसका भंग कर देते। तीसरे तीन उपाय हैं, सत्य वचन आधीनता परप्रिय मातृ समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसी दास जमान। क्या है? सत्य बोले खाली, झूठ नहीं बोले। बोले तो डंडो नहीं चाले तो मुंह नहीं चाले, थोड़ा डर नहीं चाले पछी वो डंडो चाले गड्ढे ढमा ढम चाले। सत्य वचन आधीनता, हम साचू बोलो छो, ये अभिमान नहीं आना चाहिए। परतीय मात समान, पराई स्त्री माता नीचे कुदृष्टि ना थाय। सत्य वचन अने आधीनता ने पराई स्त्री मात समान, खाली सत्य पे रहे ईश्वर प्राप्ति हो जाए। और इससे भी दो उपाय बताए शास्त्रों ने, दो बातन को भूल नहीं नारायण चाहे कल्याण, दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण नारायण, एक मौत को दूजो श्री भगवान। महाणियावा जी ने स्त्री को शमशान में नहीं जाना चाहिए, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ेंगे तो शमशान में जाने का वैराग्य आ जाएगा। अपने मन को शरीर को बोले कि देख एक दिन इधर राख हो जाएगा, ऊंची कूड़ो नू छकलो नू जांबुड़ो नू फलाणो आ बधो हूं मुकेलू नाम छे, हूं कौन छू तो जानतो नथी, अहीं आवानू छे, गमे एटली आंखो रूपाळी छे, गमे एटलू मोटू मोटू छे, गमे एटली साइट सरदार जेवी छे, तो ए शू छे बळी जवानू, हूँ 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 मारू मारू क्या उदी जो। बार बार शमशान में अपने मन को समझाए और फिर भगवान का स्मरण करे, इसमें दृढ़ हो जाए तो भी कल्याण हो जाए। अगर एक ही बात से ईश्वर प्राप्ति चाहते हो तो तन से मन से सच्चाई से भगवान की शरण आ जाओ। सर्व धर्मान परित्यज्ये मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे द्यो मोक्षयामि मा शुच। जिसको एक से तरना है तो एक से, दो से पार होना है तो दो से, तीन से, चार से, पांच से, छह से, सात से, आठ से, नौ नौ उपाय बताए। कोई उपाय तो अपने जीवन में पकड़ लो बाबा, नौ नौ गाड़ियां खड़ी है, किसी में भी बैठ जाओ, सब मोक्ष के द्वारे आती है। ओम शांति, ओम शांति। आओ बीजे क्या है मल है, आवाज सुंदर उपाय बीजे क्या है मल है, ऐसे उपाय कहीं मिलेंगे दूसरी जगह? शिविर की आखिरी वेला है ईश्वर प्राप्ति के नौ साधन, एक ईश्वर प्राप्ति के एक से नौ साधन, और भगवान अर्जुन कृष्ण अर्जुन संवाद के सात प्रश्नोत्तर कैसे के साइड में लिख देना, कृष्ण अर्जुन संवाद के सात प्रश्नोत्तर और ईश्वर प्राप्ति के नौ उपाय। ईश्वर प्राप्ति के एक से नौ उपाय, एक उपाय करना है तो भी करो, दो वाला करना है, एक पहिए की गाड़ी, दो पहिए की गाड़ी, नौ पहिए की गाड़ी, जिसमें भी बैठ जाओ। एक लव्य तो एक पहिए की गाड़ी में बैठ गए थे, पार हो गए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति एक तक देखते, एक तक देखते देखते प्रेरणा लेते धनुर्विद्या में पार हो, भगवत विद्या में भी ऐसे पार हो जाए थे। तब तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। उस प्रसाद से अंदर की शांति आनंद से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो रुपया, ये वो मशीनरी, सेल्समैनी, ये बिजनेस, ये तो सब यहां पड़ा रहेगा, लेकिन ये अध्यात्म खजाना तो मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। आज जो तुमने कमाया है उसके आगे सूरत की कमाई करोड़ रुपया रोज की भी कोई माना नहीं रखती। इतनी कमाई हो गई, करोड़ तो इनकम टैक्स वाला और मौत छीन लेगा, लेकिन ये न मौत छीन सकता है न इनकम टैक्स वाला छीन सकता। ये ऐसी कमाई हो रही। गुरु का मंत्र लेकर जपता था साधक, सत्संग सुनता था, सेवा में कोई भयंकर अपराध हो गया, गुरु नाराज हो गए, श्राप दे दिया कि तू चमार के घर का भोजन मेरे को खिलाया, बेदरकार, गुरु ने सेवा में आटलो बेदरकार गजेड़ो, जातने चमार ना घरे अवतार लेवो पड़े। वो साधक जब मौत हुई तो दूसरा जन्म उसको रघु चमार के घर मिला। रघु चमार के घर जन्म मिला, लेकिन गुरु का दिया हुआ मंत्र तो जपा था और गुरु का सत्संग सुना था, वो पुण्य कहां जाए। 10 वर्ष की उम्र के पहले ही उसको अंदर की वो पहले के सत्संग और जप का प्रभाव खुल गया। जैसे कविता कभी पढ़े थे और कभी कभी वही कविता और वो गाना अपने आप उभर जाता है। बचपन के गाने कभी कभी निकल आते, उभर आते, याद न करो तो भी। तो ऐसे ही अगले जन्म की आध्यात्मिकता और गुरु मंत्र और गुरु सेवा का प्रभाव उखड़ गया, उभरा। इतना अपने इलाके में प्रसिद्ध हुआ कि संत तुलसीदास महाराज को उनकी महिमा का पता चला। तुलसीदास महाराज रघु चमार का घर पूछ रहे हैं कि उनका बेटा जो रहीदास है वो कोई वैष्णव है, अगले जन्म का भक्त है। रहीदास के दर्शन करने गए संत तुलसीदास, और वही रहीदास आगे चल के संत रहीदास बने। वो सदना पीर संत रहीदास को पटाने को आया कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ तो सिकंदर लोदी तुम्हारे को बड़ा गुरु बना लेंगे और हम भी तुम्हारा नाम करेंगे। सदना पीर ने बहुत कुछ बोला कि तुम कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, ये करो वो करो, ये मूर्ति पूजा तो पत्थर को क्या पूजना, ऐसा वैसा सब। ये सब सदना पीर की बात सुनने के बाद रहीदास ने कहा, देखो सदना पीर, तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब मेरी बात सुनो। तुम बोलते हो कि तुम बुत परस्ती वाले हो, मूर्ति पूजक हो, पत्थर पूजते हो, लेकिन हिंदू जब मूर्ति को पूजता है तो ऐसा भावना नहीं रखता कि हे पत्थर तेरे को मैं नमस्कार करता हूं। हिंदू जानता है कि भगवान अनुस्यूत है जड़ चेतन में, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा और पूजा करके भगवत भाव से पूजता है। ऐसा नहीं सोचता कि हे 10,000 के जयपुर के पत्थर अथवा हे शालिग्राम के 50 ग्राम के पत्थर तेरे को नमस्कार है। राजा की मूर्ति ले गए और वजीर को बोला कि ये क्या है। बोले राजा साहब है। बोले राजा साहब तो ये सामने बैठे, ये तो कागज और स्याही है। तो बुद्धिपूर्वक तो कागज और स्याही दिखता है, लेकिन फिर भी उसका आदर करने से राजा का आदर हो जाता है, और उसको जूता मारो तो राजा भी सजा देगा और मंत्री भी घबराएगा। है तो स्याही और कागज, ऐसे देखने में तो मूर्ति आती, लेकिन जिसकी मूर्ति है और जो मूर्ति को भाव से मानता है उसके आगे वो भगवान के रूप में, उसका हृदय पवित्र होता है और भगवान भी जानता है अंतर्यामी कि मेरा पूजन करना है। इसलिए हिंदू लोग देवी देवता को या मंदिर में जाते तो पत्थर को नहीं पूजते। पत्थर की मूर्ति निमित्त होती है और पत्थर में भी भगवान देखने की ताकत ये हमारे धर्म में है। इस प्रकार की बातें सुनाकर सदना पीर को ऐसा ज्ञान दिया कि सदना पीर देखता ही रह गया। बोले तुम बोलते हो खुदा कलाम कुरान बताओ, ये जो कुरान है खुदा की कलाम है, फिर क्यों जीव को मार कर खाओ? जब खुदा की कलाम है तो फिर जीवों को, बकरी को, गाय को, मुर्गी को रोजा रखो दिन भर, और शाम को बिचारी चीचियारी करती और मुर्गी को काटते, उपवास ना डाले मर्ग का भी खाओ। हाँ, पछी के खुदा का है, खुदा का है क्या? खुदा का, खुदा का खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ? खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ कि आज रोजा रखा है और खुदा के लिए करते कि खुद के वासना के लिए करते? अपनी भगवत प्रीति नहीं है तो मुर्गी से सुख लेने के लिए रोजा रखते हो फिर मुर्गी काटते, ईद के दिन बकरा काटते। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ, बेचारा अल्लाह ने दोष लगाओ चूंकि अल्लाह की मर्जी है। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे, भक्ति करे फिर खून बहावे। एक तो भक्ति करे आपको डर, उपवास करे बहुत सारू, अने पछी सांजे जीवन लोही काढ़े बिचारा ने चीचियारा करावे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे, जिसमें जीव हिंसा लिखी वह नहीं खुदा कलाम। जीवों की हिंसा करने का जिसमें लिखा है वो खुदा का वचन नहीं होता, खुदा का कलाम नहीं होता। दया करे सब जीव पर सोई अहले इस्लाम, वो अहला उत्तम इस्लाम है कि सभी जीवों पे दया करना चाहिए। निराकार तुम खुदा बताओ कि खुदा निराकार है, तो कुरान खुदा का कलाम बताओ तो कुरान तो साकार हो गया, खुदा निराकार है तो फिर साकार वस्तु कैसे बनी? कलाम कहो तो बने साकारा, फिर कहां रहा खुदा निराकारा? सदना पीर निरुत्तर हो गया। रहीदास के चरणों में सदना पीर ने प्रार्थना किया कि आप मेरे को हिंदू बना दो। हिंदू बना दिया सदना पीर, हिंदू साधु बन गया। सिकंदर लोदी को पता चला तो सिकंदर लोदी ने रहीदास को बोला कि तुमने ये क्या कर दिया, हमारे सदना पीर को तुमने हिंदू बना दिया, अब फिर से तुम भी मुसलमान बन जाओ और सदना पीर भी, तुम्हारी ये राज दरबार में इज्जत करेंगे, ऐसा देंगे, ऐसा पद देंगे, लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे। बोले वाह वाह मरने वाले शरीर की करेंगे, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूंगा? बोले नहीं मानोगे रहीदास तो हम तुम्हारी खोल खिंचवा देंगे, दिल्ली का तख्त है, तुम एक व्यक्ति हो और हम पूरा राज्य है, बोलो हमारी मिलिट्री के आगे तुम्हारा क्या चलेगा? बोले तुम्हारी फौज मिलिट्री सब मिलकर क्या करेंगे, शरीर को मारेंगे, मेरा आत्मा अमर है और मैं सच्चा धर्म नहीं छोड़ूंगा। वेद धर्म है पूर्ण धर्म, वेद अतिरिक्त और सब भर्मा, और सब मनुष्यों के बराबर धर्म बनाए हुए हैं। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपूल प्रतीता, वेद वाक्य उत्तम धर्म निर्मल वहां का ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढूं कुरान? श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनः धर्म न जाए। प्राण निकल जाए पण पोते जन्म जात हिंदू थे इन जन्म्या छे, आपके तो मनुष्य मुसलमान बनाता है, कोई कोई ईसाई लोग ईसाई बनाते, लेकिन हिंदू तो जन्म जात भगवान के बने बनाए हिंदू, किसी को हिंदू बनाना नहीं पड़ता है। जब ईश्वर के बनाए हम अपने धर्म में आए तो काय को हम अपना धर्म छोड़ेंगे? प्राण जाए पुनः धर्म न जाए। कुरान बहिष्ट न चाहिए मुझे, तुम बोलते हो तुम कुरान पढ़ो फिर तुमको बिस्त मिलेगा, हूरे होगी, शराब के चश्मे होंगे, तो शराब के चश्मों के लिए मैं भजन करूं? हूरे मरना वैश्याएं, वैश्या को गले लगूं, इधर ही गले लगते तो कमर तोड़ कार्यक्रम होता है तो उधर दारू पी के गले लगेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हमको वैश्याएं नहीं चाहिए, चश्मे शराब के चश्मे नहीं चाहिए, बिस्त नहीं चाहिए, हमारा तो दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, ओम आनंद ओम माधुर्य ओम ओम प्रभु ओम ओम, तो हमारा हृदय तुम्हारे बिस्त और अप्सराओं से और शराब के चश्मों की ऐसी तैसी शराब के झरने हैं तो तुम्हारे को मुबारक है, हमारे तो भक्ति रस का झरना अपने पास ही है। ओम आनंदम ओम माधुर्यम ओम प्रभु। कुरान बहिष्ट न चाहिए मुझको हूरे हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गले चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। आत्मा परमात्मा अपने साथ है, भरम नहीं कि मरेंगे। हूरे वो रांडे वैश्याएं आके सुख दे की दारू के चश्मे सुख देंगे, ये भ्रांति से भविष्य की कल्पना करो। अभी दुखी रहो और भविष्य में शराब पीकर क्या सुख मिल जाएगा। अभी शराब सत्यानाश करता है, पैसे देके लेते तो भी सत्यानाश करता, तो मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। तो ये सत्यानाश करने वाला मैं शराब के लिए हूरों के लिए काहे खुद कुरान पढ़ूंगा। मैं नहीं आता तुम्हारे धर्म में। करी कल्याण मिटावे भरमा, सत्य सनातन वेद है ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवास। सिकंदर लोदी तुम वृथा बकवास करते हो, ये ले लो नहीं तो तुम्हारा तलवार से सिर काट दूंगा, तुम्हारे को यमुना में डाल दूंगा, फेंक दूंगा, तो मेरे को क्या डराते। मरेगा तो शरीर मरेगा, और हजारों बार शरीर मिले मर गए तो मैं काहे को डरूंगा, अपना धर्म छोड़ूंगा। तुम्हारे धर्म में भी आऊंगा तो भी तो मरूंगा, तो अपने धर्म में मर के अमर हो जाऊंगा, तुम क्यों डराते मेरे को। ऐसी सुना दी। वेद को व्रता करे हा? ज्ञान धर्म मर्याद जाना, जो ना जाने वेद को व्रता करे बकवाद। मैं नहीं बस दब्बू बाल गंवारा, मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, मैं दब जाऊं ऐसा नहीं हूं। मैं नहीं दबू बाल गंवारा, गंगा त्यागू गहूं ताल किनारा। प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य करी देऊं। चोटी शिका कबहू न त्यागू, वस्त्र समान देह भले त्यागू। कंठ कृपाण करो प्रहारा, चाहे डुबाओ यमुना के धारा। लेकिन मैं धर्म छोड़ने वाला नहीं हूं। कितनी निर्भीकता। सिकंदर लोदी के मुंह पर चाटा का चाटा पड़ गया वाणी से, खून पसीना ऐसा उकला खून। बंखवा इस काफर को पैरों में जंजीरे और हाथ में हथकड़ियां डालकर जेल में धकेल दो। सिकंदर लोदी बकवास करता है, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, मुझे नहीं चाहिए हूरे हजार। अब देखो क्या मिलता है। दुख का निमित्त तो सिकंदर लोदी ने पैदा किया, लेकिन दुखी होना न होना रहीदास जानते थे। जेल में गए, शांत बोले, अंतरात्म देव, हे अध्यात्म देव, ये आदि भौतिक शरीर को जंजीरे पड़ी है, आदि भौतिक शरीर का उसने अपमान किया। अब मैं दुखी हूं कि नहीं हूं ये तू परीक्षा के लिए लीला रचा है। उसके अंदर गुस्सा कराने की सत्ता भी तेरी, और यहां गुस्सा सहने का ज्ञान भी तेरा। तेरे क्या खेला खेला तेरे को, कुछ न कुछ नवीन करता है। एक जैसा काम करने से तू बोर हो जाता है, इसीलिए सब नया नया वैरायटी पैदा करता है। यार तू कैसा है? ओहो, वो भगवान के साथ, अंतरात्मा के साथ, अध्यात्म के साथ बात करते मजा ले रहा है, और वो महानंदी क्या क्या लीला है, कहीं गुस्सा करवाता और कहीं गुस्सा सहलवाता है, क्या क्या तेरे खेल है। शरीर अलग अलग दिखता है, आंखें अलग अलग, भाव अलग अलग, लेकिन सत्ता वही की वही। चना बोओगे तो उसके पत्ते अलग निकलते, गेहूं की पत्तियां अलग उभरती, इमली के पौधे बो तो अलग पत्ती निकलती, लेकिन जमीन पानी तो वही का वही। जैसा बीज का संस्कार ऐसे अलग अलग छोड़ उभरते, ऐसे ही तू चैतन्य वही का वही, लेकिन जैसे जिसके मन के संस्कार और कर्मों के संस्कार, ऐसे संसार विचित्र तेरी लीला है। तू अध्यात्म, तू आदि देव, आदि यज्ञ, पुरुषोत्तम तेरी लीला, तू ही जाने वाला वालूड़ा। पैर में जंजीर, हाथ में हथकड़िया, लेकिन दिल में दिलभर तेरा आनंद है। संसार बेचारा क्या जाने, तेरी मेरी दोस्ती पक्की। दुख का निमित्त तो बाहर हुआ है, दुखी होना न होना ही तो तेरे प्यारों को आता है। मारा वालूड़ा मारा अंतर्यामी, वो तो आनंद में अंतर्यामी कुआ के आए रे। हमें सिकंदर लोदी के साथ लीला करो। सिकंदर लोदी नमाज अदा करता है तो देवता का रविदास होकर रविदास इधर कैसे है रविदास बाहर रहीदास, ऊपर रहीदास, पीछे रहीदास, रहीदास तुम्हारे इतने रूप, रहीदास, 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 रहीदास। जैसे कण कण में परमात्मा चेतना, ऐसे परमात्मा में रमण करने वाले रहीदास का भी जहाँ दर्शन करते हुए सिकंदर लोधी अपने तपे हो गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। क्या हुआ जहाँ पना, ये रहीदास मालिक आप पागल तो नहीं हुए, कोई नहीं है, कोई नहीं, यहाँ ठीक हो जाओ आप, पानी छंडो। मालिक डॉक्टर हकीम आए, बोले नहीं नहीं रहीदास, ये रहीदास, रहीदास, दवा दारू सब फैल, दवा का न थींदी मुझे दर्द जी, मेरे दर्द की दवा अब कोई नहीं कर सकता। उस फकीर को सताया मैंने, मैंने सताया, अपने आप को कुट रहा है, कुटवाने की प्रेरणा भी तू ही तो दे रहा है। अध्यात्म देव तेरी कैसी लीला है, मारा वालूड़ा मेरे आत्म देव। प्रायश्चित करके सिकंदर लोधी को शुद्ध कर रहा है और प्रेम धारा से स्मृति कराकर रहीदास को और चमका रहा है। तेरी लीला तू ही जाने, है जग के पालनहार, जग के सर्जनहार, जगदीश्वर मारा प्रभु मेरे दीन दयालु, कैसा तेरा खेल। रहीदास को बुलाया जाए, बा इज्जत उसका खूब स्वागत किया जाए और उस फकीर को आदर से लाया जाए। उस फकीर वो अल्हालोक है, खुदाई फकीर है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ अल्लाह का ओलिया है। मुझ मूर्ख ने उनका अपमान किया, ऐसा प्रायश्चित भी वही करवा रहा है। रहीदास आए फकीर, हे खुदा के फिरस्ते, मैंने आपको नहीं पहचाना था। बोले तुमने अपने को नहीं पहचाना तो मेरे को पहचानने का सवाल ही नहीं होता है। तुम तो शरीर को मैं मानते हो, राज्य को मेरा मानते हो, लेकिन शरीर तुम्हारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, राज्य पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा दिल भर अल्लाह तुम्हारे साथ पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको जान लो ना सिकंदर लोधी, भैया तेरा कल्याण हो। बाबा मैंने तुम्हारे पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां और आप मुझे भैया बोलते हो। भैया सिकंदर लोधी, पैरों में, मेरे पैरों में जंजीरें तुमने नहीं डाली थी, शरीर के पैरों में जंजीरें थी, जो मर जाने वाला था उसके पैरों में जंजीर और उसके हाथों में जंजीरें। मुझ आत्मा को जंजीर कहाँ बांध सकती है, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। रहीदास इतना समझ और इतनी शांति, बोले अगले जन्म के गुरु का मंत्र और सत्संग और इस जन्म में संतों की कृपा है, अब मेरे को दुख क्या दुखी करेगा और वाहवाही क्या मेरे को फंसाएगी। हम है अपने आप परिस्थितियों के बाप, सिकंदर तेरा भला हो, मंगल हो, तेरा मेरा जो सत्संग सुनेगा करेगा उसको भी ईश्वर की प्रीति और ईश्वर का ज्ञान, सुख दुख में सम रहने का प्रसाद मिल जाएगा, मौज हो जाएगी, मौज, ओम आनंद, ओम माधुर्य। हर परिस्थिति में खुश रहना सीखो, अपने दिलबर के साथ दिल मिलाकर जियो सिकंदर। भैया तुम्हारा कल्याण हो, बाबा शर्मिंदा ना करो, कहां तो मैं राजकाज के अभिमान में चूर और सदना पीर को फिर से हमारे मजहब में लाओ, तुम हमारे मजहब में आ जाओ। तुम्हारे पर शासन करने की धृष्टता करने वाला काम में नाचीज इंसान और कहां तुम फिरस्ता फकीर, अल्लाह के खास लोग। बोले अल्लाह के खास लोग हम ही नहीं है, सारी दुनिया अल्लाह के खास है, लेकिन वो संसार को प्यार करते इसलिए नहीं होते पास, नहीं तो है अल्लाह के खास। सिकंदर तू चिंता का है करे भैया, कैसे भारत के संतों का हृदय। सिकंदर लोदी को भी धन्यवाद है कि प्रायश्चित की आग से अपने अहंकार के पाप ताप के दोषों को धोने में बहादुरी दिखाई। ओ नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार का सत्संग बार बार सुने, संसार क्या करेगा उसको। जरा सी सासू ने बहू ने किसी ने निंदा की, काय को तप मरे। जरा सा किसी ने वाहवाही की तो काय को फूलना, ये तो सब मरने वाले शरीर का है। आतशबाजी का हाथी और उसकी कोई आरती कर ले तो क्या है, और कोई उसके ऊपर चकला बैठा दे तो क्या है। दशहरे का रावण उसकी मूछें लंबी है तो क्या है, टूंकी है तो क्या है, अभी भयादर फड़ाफड़ होने वाला है। ऐसे ही ये प्रकृति का शरीर है, इसकी वाहवाही हुई, एयर कंडीशन में जिया तो क्या, और साधारण जिया तो क्या, अच्छे टेरिकॉटन फलाने कपड़े पहने तो क्या, सीधा साधा पहना तो क्या, ये तो मरने वाला शरीर है। और मैं अमर आत्मा हूँ, हम है अपने आप शरीरों के बाप, चैतन्य के खुद ईश्वर के अविनाशी अंश है। काय को घबराना, काय को चिंता करना, काय को डरना, काय को मरने वाले शरीर के साथ मरना। कि मन तो दी चिन्नू दुखावो छे, दही खादू हसे, जूस की दीदा से, राते मोड़ू खादू हसे, एसी ने हवा मराया आसो मासी, एटले आवु छे। हवे पंच कर्म करी सकाय अथवा तो बची वमन कर्म करो। कफ वधारे होय तो वमनम कफ शवनम, पित्त ना कारणे दुखावो थतो होय तो शयनम पित्तनाशनम, ऊंग सारी लो राते, मर्दनम वायु नाशमनम, मालिश करो तो वायु दोष दूर होता है। तो कौन से दोष से पीड़ा होती है उसके विपरीत खान पान करो, शरीर ठीक होता है। फिर प्राणायाम करो, कस के जमणे नाक्स के सांस लो, रोको डाबे से छोड़ो, तो जठरा प्रदीप होगी, भूख खुलेगी। लेकिन गर्मी में जमणे से लोगे और डाबे से छोड़ोगे तो पित्त बढ़ेगा। और सर्दी में जुकाम हुआ है, ढिचन दुखती है, सर्दी में शरीर पकड़ा गया तो जमणे से लो डाबे से छोड़ो, पांच ज्यादा नहीं। अगर सर्दी से सर्दी के कारण रोग हुए तो जमणे से लो सूर्य नाड़ी से और डाबे से छोड़ो। गर्मी के कारण कोई रोग है, आंखें जलती है, मासिक अधिक है, अथवा पूरा फूसी हो गया है तो डाबे से लो जमणे से छोड़ो, पूरा फूसी शांत, रक्त स्राव बंद, अल्ट्रासाउंड फलाना साउंड की ऐसी तैसी, ब्रह्म साउंड लगा दो बस। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। मुझे तो तुम्हारे भाग्य पर कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम इतने इतने भटके, हमको ऐसा सत्संग मिला होता घर में रहते तो अभी हम कहां होते। तुम तो नोट भी गिनते रहते, छोकरे का मुखड़ा भी देखते रहते, लाडी लाडे साथ में भी रहते हो तभी भी तुमको ऐसा मिलता है। हम तो क्या क्या मजूरी सहा तभी भी ऐसा सत्संग हमको नहीं मिला सुलभता से। बोलो, मैं सच बोलता हूँ अपने सिर पर कसम, हाथ रख के कसम खा के। हमने तो बर्तन मांजे, बर्तन गुरु के द्वार पर हाथ में चीरे पड़ जाते थे पहाड़ी मिट्टी के कारण, और कहीं सेवा न छिन जाए इसलिए पट्टी बांध देते थे और नीचे से पानी भर के बाल्टियां बाल्टियां आश्रम में ले आते, लोग पीते हम भी पीते, बाजार से सब्जी के ठेले उठा उठा के ले आते पैदल, दूर तो तीन तीन चार चार किलोमीटर दूर से, और तुमको हंसते खेलते मिल रहा है, कैसे आश्चर्य। हमारे से तो तुम्हारा भाग्य जोरदार है, लेकिन तुम कदर करोगे तब। तुमने सुनकर खंखेड़ दिया तो भी लाभ तो होगा, मद लेके वापस कर दिया तो भी चिकनाहट तो रहेगी, घी लेके तपेली खाली कर दी लठी जोटू तो भी चिकास तो रह से, ऐसे खंखेर दिया तभी भी पुण्य तो चिपक गया। ईश्वर नहीं चाहिए तो इतना सुनने से स्वर्ग तो रिजर्व हो गया तुम्हारा। ये ऐसा परमात्मा तत्व का ज्ञान है ना। एक अच्छे ब्रह्मज्ञानी संत थे, वो किसी आश्रम में आए, मैं भी उस आश्रम में गया था। तो उनका जो बिल्डर सेवक था वो संत बांकड़े पे बैठने को गए तो बिल्डर सेवक ने अपने रुमाल से खंखेर दिया। तो वो संत ने बोला, जो ईश्वर नहीं चाहिए तो इतनी सेवा करने से स्वर्ग का सुख तो चौंट जाएगा तेरे को भाई। जो ईश्वर ना जोईता हो, ईश्वर ना जोईता है तो अटली सेवा थी स्वर्ग नु सुख चौंट से अल्या। लोगों करोड़ों रुपया खर्चो करीने स्वर्ग माते ना यज्ञ करे, पर ब्रह्मवेता संत नहीं बैसवानी खुर्शी अटली खंखेरी दीदी ने तो ये स्वर्ग नु सुख चौंटी जाए अल्या। अभी इतने नारकीय जीवन में जी रहे फिर भी हृदय में स्वर्ग का सुख कितना चिपका हुआ, कितना आनंद है। क्या ये चाट पकोड़े का है, भूसा खावानु सुख छे के चीकू खावानु सुख छे? चीकू जूस नहीं पीवानु, कप करे, चीकू बहुत कप करता है। जो पतला दुबला है वो चीकू खाए, लेकिन मोटा आदमी चीकू खाएगा तो उसको चीकू पकड़ लेगा उसका दीचर। मोटा नहीं खबर पड़ी रहा था चीकू ज्यादा मानस नहीं है, वो जबरो से चीकू पतला दुबला ने मोटो कर नाखे अने मोटा ने एकदम बचे जरा उभा करो कारण के चीकू खाड़ा है बेटा खबर पड़े है। उठने का मन होता है क्या? चार से साढ़े सात, तीन घंटे 35 मिनट हो गए। ये अध्यात्म सुख है, आदि भौतिक शरीर में भी अध्यात्म सुख कितना पावरफुल है। आदि यज्ञ हो रहा है, आदि कर्म हो रहा है, आदि स्वरूप में विश्रांति मिल रही है। शरीर आदि नहीं है, शरीर आदि में नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, लेकिन वो परमात्मा आदि में भी था, अभी भी है, अंत में भी रहेगा, उसी का सुख मिल रहा है। मरने वाले को अमर का सुख मिल रहा है, जड़ को चेतन का सुख मिल रहा है, अनित्य को नित्य का वैभव मिल रहा है। कितनी सत्संग की बलिहारी। इसलिए बोलते एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप नाश हो जाते। सत्संग में जाते एक एक कदम चल के कथा के जगह में पहुंचते, एक एक यज्ञ करने का फल तो वहीं हो जाता है। सुनते तो भक्ति योग का फल होता है, बैठते तो भक्ति योग, सुनते तो ज्ञान योग, और जब कीर्तन करते तो तुमुल ध्वनि पैदा होती, सारा भौतिक शरीर भगवान के नाम से पावन हो जाता, मानसिक वातावरण और ये हवा दूर तक लोगों को जीवों को उद्धार करती है। गंगा का स्नान, तीन प्रकार के तीर्थ होते, आदि भौतिक तीर्थ जैसे गंगा है, यमुना है, गंगा स्नानम नर्मदा पानम तापी स्मरण मात्रेण, सूर्यपुत्री है तापी, और तापी का तो दर्शन भी करो तो पुण्यवाय होता है, और तापी के तट पे सत्संग मिलता है। तो तीन प्रकार के तीर्थ होते। एक होते स्थावर तीर्थ, अपनी जगह पर रहते, जैसे पुष्कर में जाएंगे, अजमेर जाएंगे तो पुष्कर तीर्थ, हरिद्वार जाओ तो गंगा तीर्थ, द्वारिका जाओ द्वारिका तीर्थ, काशी जाओ, ये स्थावर तीर्थ है। दूसरे संत होते हैं, जहां जाते हैं उनके पुण्य प्रभाव से आए, उनको बोलते हैं जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ होते संत। और तीसरे होते अध्यात्म तीर्थ, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, आर्जव तीर्थ, सरलता भी तीर्थ है, ब्रह्मचर्य परम तीर्थ, तपा तीर्थ, ये भी सब अध्यात्म तीर्थ होते। तो जो सत्य में सत्संग में रहता है उसको बाहर की गंगा में नहाने की जरूरत नहीं होती। ऐसा पुरुष गंगा में नहाता तो गंगा अपने को पवित्र मानती। जो आत्मज्ञान के तीर्थ में नहाया, अध्यात्म तीर्थ में जो नहाया, वो आदि भौतिक तीर्थ गंगा में नहाता है तो गंगा जी अपने को पवित्र मानती। एक बार गंगा माता गई ब्रह्मा जी के पास, तो गंगे हर करके लोग मेरे में पाप डाल जाएंगे तो मेरा क्या होगा भविष्य। ब्रह्मा जी ने कर्मंडल से 3 अंजलि पानी दिया, समाधि लगाई, अध्यात्म स्वरूप में शांत अपने मैं में विश्रांति, अपने आत्मस्वरूप में विश्रांति ही सब गुणों की कारण। और ब्रह्मा जी को पता चल गया कि क्या उपाय। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री गंगे, लोग गंगे हर करके तुझ में नहाएंगे, उनके पाप ताप मिटेंगे, सदगति होगी, ये तो सत्य है। लेकिन तेरे पाप जब आत्म गंगा में नहाने वाले संत लोग तुझ में नहाएंगे तो तेरे पाप मिट जाएंगे, तू शुद्ध हो जाएगी। जैसे पानी और चीजों को शुद्ध करता लेकिन फटकड़ी पानी को साफ कर देती, ऐसे संत की चरण रज गंगा तेरे को पावन कर देगी। इसलिए कबीर जी ने कहा, कितनी ऊंची बात, तीर्थ नहाए एक फल। तीर्थ में स्नान करेंगे तो धर्म लाभ होगा, संत मिले फल 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सतगुरु मिले अनंत फल, ऐसा संत अगर हमारा सतगुरु है तो हमको तो अनंत फल मिलेगा। जिस फल का अंत न हो ऐसा मुक्ति फल मिल जाता है, मोक्ष फल।